Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Vishwananda Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari Om. कथायां पीयूषं प्रवचन कलायां च पटुतां सुलेखे लालेत्यं लसति किल यस्य क्षितितले स्मरामि प्रातस्तम् भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहम् ब्रह्म परमम् नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरे शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 सर्वम् ह्येतद् ब्रह्म और ये सब ब्रह्म है स्वयं आत्मा चतुष्पाद वही ये आत्मा है और ये चार पादों वाला है अर्थात इस आत्मा को ब्रह्म रूप जानने के लिए चार पादों में इसका विचार करना चाहिए तो तीन पाद तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के हैं उनके अभिमानी के रूप में अथवा उनके दृष्टा के रूप में ये आत्मदेव उपस्थित रहते हैं कहीं जाते नहीं हैं ये जिसको हम मैं बोलते हैं तो इस मैं से व्यक्तित्व यदि निकल जाए तो ये आत्मा ही है लेकिन ये ब्रह्म है ये बात अपने आप समझ में नहीं आ सकती इसके लिए कोई प्रमाण चाहिए अब आत्मा की ब्रह्मता में क्या प्रमाण है तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो नहीं सकता आजकल तो सब प्रत्यक्ष के बिना कुछ मानने कोई तैयार नहीं है बोले हमको तो दिखाओ माने आंख से दिख लें कान से सुन लें बोले पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है तो कोई मर के जाए फिर लौट के आवे फिर बतावे तब माने तभी यही तो प्रत्यक्ष होगा और क्या तो बोले ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है और जो इंद्रियों का विषय नहीं होता है वो अनुमान का भी विषय नहीं है मन का भी विषय नहीं होता क्योंकि मन तो जो इंद्रियां इन्फॉर्मेशन भेजती हैं मन को इंद्रियां मन तो बस वही जानता है, उससे अधिक नहीं जानता। बुद्धि कल्पना कर सकती है, लेकिन वो भी उसका आधार भी ज्ञात ज्ञान ही होता है। अज्ञात की कल्पना, अत्यंत अज्ञात की कल्पना नहीं होती। तो इसलिए अनुमान प्रमाण भी इसमें नहीं चलेगा, अर्थापत्ति अर्थात इन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, अर्थात वो अर्थात भी नहीं चलेगा, क्योंकि तो सब अनुमान के ही स्वरूप हैं। बोले जो आदमी बड़ा मोटा हो रहा है, बोले अच्छा खूब खाता होगा, नहीं हमने तो देख लिया सारे दिन रहकर कुछ नहीं खाता है। तो बोले मोटा है और सारे दिन नहीं खाता है अर्थात रात को खाता है। इसमें से ये अर्थ निकल आया, रात में खा लेता होगा। तो ये अर्थात भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो अनुमान के से आगे की चीज है। उपमान ब्रह्म कैसा है कि ऐसा है। अब ऐसे को आप जानोगे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से, तब ना उसकी उपमा दी जाएगी ब्रह्म की कि ब्रह्म ऐसा है नारायण। तो उपमान भी जो है वो भी अनुमान का ही एक हिस्सा है, अर्थापत्ति भी है, अनुपलब्धि है। अनुपलब्धि माने कोई चीज अनुभव में नहीं आ रही है। बोले यहां घड़ा नहीं है, कैसे मालूम है भाई घड़ा नहीं है? बोले घड़ा होता तो दिखाई देता। तो बोले घड़ा पहचानते हो ना, हम तो कहते हैं ये है घड़ा। बोले ना ना ये घड़ा नहीं है। तो घट को पहले पहचानना आवश्यक है, तो वो भी प्रत्यक्ष के बिना सिद्ध नहीं होगा। तो ये पांच प्रमाण तो गए, अब रह गया शब्द प्रमाण। शब्द का मतलब शास्त्र प्रमाण समझ लो। तो आदमी कोई कुछ शब्द बोल दे, बोले हम देख के आ रहे हैं स्वर्ग है, नहीं माना जाएगा, क्योंकि आदमी जो है वो तो आपको धोखा भी दे सकता है, उसका ज्ञान सीमित भी हो सकता है नारायण। तो वो प्रमाण नहीं होता है। ऐसा प्रमाण चाहिए जिसके बारे में संदेह न हो। तो वो प्रमाण क्या है? बोले हम किताब में लिखा हुआ दिखा सकते हैं। बोले वो किताब भी किसने लिखी है ये बताओ। मैं तो जब वो भी किताब सामने आती है ना, बहुत तारीफ करते हैं लोग, मैंने कहा ये बताओ इसका ऑथर कौन है। अगर ऑथर प्रामाणिक नहीं है तो उसकी किताब कैसे प्रामाणिक हो जाएगी ना? अब शंकराचार्य मान लो कोई बात लिखते हैं, तो शंकराचार्य अपने विषय में प्रामाणिक हैं, उनकी बात तो समझ में आ सकती है। कोई भी कुछ भी बोल दे लिख दे, बोले ये शंकराचार्य का सिद्धांत है, वो नहीं माना जाएगा। तो शब्द प्रमाण में भी एक तो है कि लिखंत प्रमाण है, आदमी का लिखा हुआ नहीं मानते, तो वेद को प्रमाण मानते हैं, क्योंकि ये वेद किसी आदमी के बनाए हुए नहीं है। और बोले ईश्वर ने बनाए हैं, तो ईश्वर क्या संस्कृत में ही बनाता है? तो ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर तुम इसको प्रमाण मानोगे तो हम कुरान को प्रमाण मानेंगे, हम बाइबल को प्रमाण मानेंगे, क्योंकि वो भी सब यही मानते हैं कि ईश्वर की रचना है। तो वेद प्रमाण इसलिए नहीं है कि वो ईश्वर की रचना है, वो ऋषियों की रचना भी नहीं है, क्योंकि वेद तो अनादि सिद्ध ज्ञान है, वो सृष्टि में हमेशा रहता है। जैसे इस समय यहां रेडियो वेव्स हैं, अब आप अपना रेडियो ट्यून कर लो उसी वेवलेंथ पर। हम छोटे से थे तब सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण की गीता जो है वो अब भी गूंज रही है, अपनी वेवलेंथ उस पर कर लो तो सुनाई पड़ेगी। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो श्री कृष्ण की वाणी सुनाई पड़ेगी। गीता के जो श्लोक हैं उनके अर्थ में आपकी बुद्धि प्रवेश करने लगेगी यदि आपकी और भगवान कृष्ण की वेवलेंथ एक हो जाए। वक्ता की और श्रोता की वेवलेंथ एक हो जाए तो वक्ता का ज्ञान श्रोता में उतर जाता है। ये गुरु शिष्य का जो संबंध है ना वो ये ऐसे ही है, वेवलेंथ एक करनी पड़ती है। बोले गुरु जी आपकी सब बात मानेंगे मगर ये बात नहीं मानेंगे, तो अभी तुम्हारी वेवलेंथ जो है वो अलग है। आज तो इस बात को कह रहे हो, कल को हमारे ज्ञान को भी कह दोगे कि भाई हम नहीं मानेंगे। इन टोटो वेवलेंथ उसके साथ मिलानी पड़ती है। तो शब्द प्रमाण में भी वेद प्रमाण है, वेद में भी जो भेद के प्रतिपादक वचन है वो प्रमाण व्यवहार के लिए तो है लेकिन परमार्थ के लिए वो भी प्रमाण नहीं है। अब जैसे सर्वम हेतद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, तो ये भेद वचन नहीं है, ये अभेद वाचक है, सब ब्रह्म ही है, तो ये तो प्रमाण हो जाएगा। अब बोले यहां पुरुष अलग है स्त्री अलग है, उसका ये कर्तव्य है स्त्री का ये कर्तव्य है, जहां भेद को स्थापित करके बात होती है वहां व्यवहार के लिए होता है, वो व्यवहार में प्रमाण है तो उस कानून में तो स्मृतियां ही बदल देती हैं और अब तो सरकार बदल देती है। हिंदू लोग कितनी बार बदला जा चुका। तो परमार्थ क्या है कि एक ही तत्व है सृष्टि में, वही आत्मा है और वही संसार है। ये एकता का प्रतिपादन करने वाले जो वचन है वो महावाक्य कहलाते हैं। तो सर्वम ये तद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा भी ब्रह्म है, ये अभेद वचन है, तो ये प्रमाण है। अब इनको सिद्ध करने के लिए वेद की जिम्मेदारी नहीं है, अगर करते हैं वेद तो उसकी कृपा है, नहीं तो ये गुरुओं का काम है कि उस वचन को अपनी युक्ति से आपके मन में बिठावें। यहां तो श्रुति स्वयं ही बिठा रही है। अब इस पर कहते हैं कि हमने मान लो ब्रह्म को जान लिया तो इससे मिलेगा क्या? स्वर्ग को आप काट रहे हो, लोक लोकांतर को आप काट रहे हो, लौकिक सुखों से आप वैराग्य करवा रहे हो, तो मिला क्या? और ब्रह्म भी है तो निर्गुण है, निराकार है, न किसी की सुनता है न, तो ऐसे ब्रह्म को जान करके हम क्या करेंगे? निरर्थक है। ये प्रश्न भाष्य में उठाया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी जो समस्या है उस समस्या के लिए वेदांत में प्रवेश कर रहे हो तब तो ठीक है, और सिर्फ कौतूहलवश आप वेदांत को समझना चाहते हो कि देखें वेदांत में क्या है, तो उससे वेदांत का रहस्य नहीं खुलेगा। आपके जीवन की कोई समस्या है कि नहीं? मैं सुखी होता हूं, मैं दुखी होता हूं, मुझे मरने का डर लगता है, नारायण आसक्ति मुझको काटती है, व्यवहार में मैं अपने मन के अनुसार नहीं चल सक पाता हूं, असफल होता हूं, कौन दुख चाहता है, दुख आता है। तो अगर इन सब समस्याओं का हल जानना है तब तो वेदांत आपको काम में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो भाष्यकार लिखते हैं कि प्रश्न उठाते हैं कि शश विषाणादि समत्वात् निरर्थकत्वम तरी, फिर तो जैसे खरगोश के सींग हैं होते ही नहीं है, उसको जानने से फायदा ही क्या है, खरगोश के सींग नहीं है तो मिला क्या झंझना। तो बोले देखो सुनो, ये आपको जो सुख दुख और इत्यादि बंधन हो रहा है ये पुनर्जन्म की श्रृंखला के कारण होता है। ये कर्म फिलॉसफी जो है इसको कोई काट नहीं सकता। कर्म का तो हम खंडन कर सकते हैं लेकिन वर्तमान में जो हमको सुख दुख हो रहा है वो हमारे ही किसी किए हुए कर्म का फल है, ये आप नहीं काट सकते। और कठोपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा है कि 100 करोड़ कल्प तक कर्म का फल नष्ट नहीं होता। 100 करोड़ कल्प, हम तो समझते हमने कोई गलत काम कर दिया और छिपा लिया तो छिप गए, तो बोले वो दुनिया से तो छिप गया लेकिन वो चित्त में जो अंकित हो गया कि मैंने गलत किया, वो चित्त तो जहां जहां आपका चित्त जाएगा वहां वहां रहेगा। तो ये कर्म का बंधन काटने के लिए है। अब इसमें कल या परसों बताया था कि अविद्या, कामना और कर्म, ये कर्म के फल के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। अविद्या अर्थात आत्मा क्या है हम नहीं जानते, फिर कामना है बीच में, वासना है। हमारी आंख ऐसी क्यों बनी, इनकी आंख ऐसी क्यों बनी, किसी की उंगली लंबी है किसी की उंगली चपटी है किसी की उंगली मोटी है, किसी के हाथ भारी हैं किसी के हाथ हल्के हैं। रामकृष्ण परमहंस देव वो साधकों के हाथों को अपने हाथ में लेकर के ऐसे तोलते थे, तो लोग कहते थे ठाकुर क्या कर रहे हो, बोले देख रहा हूं ये विषयी जीव है या साधक जीव है। विषयी जीव होगा तो उसके हाथ भारी होंगे ऐसा वो उसमें लिखा हुआ है, शरद चंद जी ने जो उनकी लाइफ लिखी है। तो उंगलियों को देख के पता चल जाता है कि ये आदमी थिंकर है कि नहीं है, विचारशील है कि या ऐसे ही बस खाया पिया मौज उड़ाया बैठने से पता चल जाता है, बोलने से पता चल जाता है, हर एक एक्टिविटी में वो जो हमारा कर्म है जो हम करके आए हैं वो झलकता है। तो कर्म के अनुसार होता है। तो ये अविद्या, कामना और कामना के बाद में फिर स्थूल शरीर से फिर कर्म होता है। अब जब आप कामना पूर्वक कर्म करोगे और अविद्या मूल में है, माने मैं करता हूं, ये तो ज्ञान है कि मैं करता हूं और मैं भोगता भी हूं और कामना भी है मुझे और उस कामना की पूर्ति के लिए कर्म भी कर रहा हूं, तो फल तो उत्पन्न होगा ही उस कर्म से, वो फल कहां जाएगा। अविद्या माने मैं करता भोगता हूं, उसके बाद कामना आई, कामना के बाद कर्म आया, कर्म के बाद फल आया, अब वो फल कहां जाएगा, आगे जाएगा कि लौटेगा पीछे को, वही भोक्ता को ही मिलेगा वो तो वापस। तो अब ये सर्किल कंप्लीट हो गए, फिर वापस भोक्ता में पहुंच गए। अब भोक्ता मजबूत हो गया उसको पा करके, अब वो फिर कामना करेगा और फिर कर्म करेगा और फिर फल उत्पन्न होगा और फिर वो फल भोक्ता को मिलेगा, यही विशेष सर्किल जो है चलता रहता है। इसी से ये पुनर्जन्म की श्रृंखला चलती रहती है। अब अगर हमें इसे तोड़ना है सब समस्याओं का हल यही है कि भैया जो अब तक हुआ सो हुआ, अब आगे ये ना हो। तो अगर इसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा कि अविद्या को काटो तो कामना ढीली पड़ेंगे, लेकिन नए कर्म करते रहोगे तो कामना बलवती रहेंगे। तो इधर तो अविद्या को काटो और इधर कर्म को ढीला करो। अरे बुढ़ापे में तो कर्म छोड़ना पड़ता है ना, तो छोड़ भी देते हैं मगर मन में सोचते रहते हैं काश हम कर सकते इस काम को। अब जब बुढ़ापे में छोड़ना है तो अपना कर्तव्य जब तक पूरा होता है तब तक कर लो, उसके बाद छोड़ दो। था तो हल्का तो हो जाएगा ना सूक्ष्म शरीर है। और अगर अविद्या नष्ट हो गई, भगवत कृपा से कहो, गुरु कृपा से कहो, शास्त्र कृपा से कहो, आत्म कृपा से कहो, यदि अविद्या नष्ट हो गई तो उसकी जड़ ही कट गई। सारा संसार जैसे वो ताश का पत महल बनाते हैं, ताश खेलते थे तो एक ताश के ऊपर दूसरा ताश थी, ऐसे करके महल बना देते, एक पत्ता नीचे से निकाल लो तो सारा गिर जाता। तो ये अहंकार के ऊपर जो है ये सारा टिका हुआ है ये महल। अहंकार माने अविद्या वाला, आविद्यक अहम। तो ये वेदांत जो है इस आविद्यक अहम के पत्ते को खींच लेता है, बस और कुछ नहीं करता, बाकी तो अपने आप है। भूकंप आएगा तो एवरेस्ट भी गिर जाएगा। पत्ता निकला नीचे से तो सूक्ष्म शरीर भी गया और कर्म आपने पहले ही छोड़ दिए, क्योंकि उसके बिना तो ये निकलेगा, पत्ता निकलेगा नहीं है। तो भाष्यकार देखते हैं कि भले ही तुम्हें लगता हो कि ये तो निरर्थक ज्ञान है, परंतु इस ज्ञान का जो दृष्ट फल है वो है तृष्णा का त्याग, वासना का त्याग। जैसे जैसे हम को ये समझ में आती जाती है कि ये चीज मिथ्या है, ये चीज मिथ्या है, वैसे वैसे उसकी जो वासना है, इच्छा है, वो ढीली पड़ती जाती है। तो पहले भी मैंने सुनाया था कि एक जादूगर ने एक हीरा बनाया, दिखाया, बोले कौन लेंगे इस हीरे को, तो बड़े बड़े लोग बैठे थे, बहुत कीमती है, तो कुछ हाथ नीचे गिर गए। अब जो ज्यादा मालदार थे उनके हाथ ऊपर रहे, बोले ठीक। फिर एक लड़की बनाई उसने, बोले देखो ये मेरी लड़की है, इस लड़की से जो शादी करेगा उसको मैं ये हीरा मुफ्त में दे दूंगा, दहेज में दे दूंगा। बोलो कौन शादी करेगा। अब सबके हाथ नीचे आ गए। अरे वो तो जादू की लड़की लड़की है ही नहीं, उस मिथ्या लड़की से शादी करके कोई क्या करेगा। और जब शादी करने के मिथ्यात्व का निश्चय हो गया तो उस हीरा का भी मिथ्या तो निश्चय हो गया। अब उस हीरा को क्या करे, हीरा भी जादू का ही था। तो इसी प्रकार से इस संसार में जितना भी है ये प्रपंच, प्रपंच माने इंद्रियों से जो कुछ भी विस्तार को प्राप्त होता हुआ सा मालूम पड़ रहा है, पची विस्तारे से प्रपंच शब्द बनता है, पांच इंद्रियों के ज्ञान का विस्तार है। संसार क्या है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं को जितना चाहो फैला लो। अब ये मालूम पड़ गया कि ये सब मिथ्या है तो ठीक है, जो फैला रहे हैं वो फैलाओ। एक महात्मा है ऋषिकेश में, तो मैंने उनसे कहा आप पेपर नहीं पढ़ते हो, बोले मैं नहीं पढ़ता हूं। क्यों, तो उनका जो कमरा है ना वो सड़क के किनारे ही है, तो बोले वो अखबार वाले सुबह आते हैं ना तो जो फ्रंट लाइन न्यूज होती हैं वो तो बोलते हुए जाते हैं, आज ये मारा गया, आज ये भूचाल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो सुना जाते हैं। फिर जो सत्संग करने लोग आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि घंटे भर बैठे तो सत्संग ही करते रहेंगे। अरे साहब आज तो अखबार में ये आया है, आधे से ज्यादा अखबार वो सुना जाते हैं। अब जो कि मैं अखबार पढ़ कर क्या करूं, अपना दिमाग और खराब करूं, उनकी तो सुननी पड़ती है क्योंकि मेरे पास बैठे हैं। नारायण, तो ये दुनिया जो विस्तार करना चाहें करें, किसी को मनाही थोड़ी है, क्योंकि अविद्या जो है वो तो जबरदस्ती करा लेती है, उससे कामना उत्पन्न होगी और कामना उत्पन्न होगी तो कर्म होगा और कर्म होगा तो संसार का विस्तार होगा। आपको यदि परमार्थ चाहिए, अपनी समस्या का हल चाहिए, तो इसको संकोच करो, कर्म का संकोच करो और उधर अविद्या पर चोट करो। जब जब कर्तृत्व भोक्तृत्व जगे तब तब एक चोट को मार ही दो, क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है, बस इतना ही कहने की जरूरत है। मैं ये नहीं हूं, फिर चाहे उसके अनुसार काम कर लो, मगर उसका मोमेंटम तो खत्म हो जाता है। जो आवेग होता है उसमें कर्म में, वो वासना का आवेग होता है, ज्ञान का आवेग होता है, वो जहां उस पर चोट पड़ी है तो उसकी जो तीव्रता है वो खत्म हो जाती है। ऊपर से सीधा आदमी गिरे जमीन पर तो बचेगा नहीं, लेकिन ऊपर से गिरे और बीच में खिड़की के उससे छज्जे से टकरा जाए, फिर दूसरे छज्जे से टकरा जाए, तो चोट भले ही लग जाए लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि उसका आवेग जो है वो बट गया। तो ये जो विचार है ये डंडा मारने जैसा है, तो वो कर्तृत्व भोक्तृत्व ढीला हो जाता है, वासना ढीली हो जाती है और कर्म भी उतना प्रभावी नहीं होता है। तो ना होगा, ये तो इष्ट है हमें, बोले दुनिया कैसे चलेगी। स्वामी महेश्वरन जी ने एक दृष्टांत दिया कि दृष्टांत भी समझाने के लिए, जरा हल्का करने के लिए होता है। वो कहते हैं कि एक आदमी बोला, महाराज मैं तीर्थ यात्रा करने जा, नहीं है, उसकी पत्नी जो थी वो उससे लड़ती थी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं करते हो, मैं क्या करूं, रोजाना लड़ाई होती। अब वो महात्मा का भगत था तो महात्मा ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, तुम थोड़े दिन तीर्थ में चले जाओ। एक साल लगाया तीर्थ में,